जब आप किसी को अलविदा कहते हैं मतलब क्या होता है? यानी हम दुनिया में जब किसी को कहते हैं तुमसे तुम्हें अलविदा, विदा का मतलब अरबी में कुछ और होता है, उर्दू में कुछ और होता है। विदा वदीअत अरबी में किसी को किसी के सुपुर्द करने को कहते हैं। यानी जब कहते हैं अलविदा, यानी हमने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया। अलविदा, वदीअत, मैंने कहा अरबी का लफ्ज है वदीआ। वदीआ का मतलब होता है सुपुर्द करना, खुदा की अमानत में देना, खुदा की सरपरस्ती में दे देना, इसका मतलब होता है। अच्छा, उर्दू में अलविदा का मतलब क्या होता है? खुदा हाफिज। उर्दू में अलविदा का मतलब बिछड़ना होता है, कोई किसी से बिछड़ रहा है, कोई किसी से दूर जा रहा है, अब दोबारा मिलने का इम्कान फौरी तौर पर नहीं है, इसको कहते हैं अलविदा। अब देखिए, ये बहुत होता है, अरबी जबान में एक लफ्ज होता है, उर्दू में जब वो आता है मीनिंग्स चेंज कर लेता है। सही है। अच्छा, बदकिस्मती से हम बोलते अरबी हैं, मफहूम कौन सा लेते हैं? उर्दू। तो जब हमने कहा फलां को मैं अलविदा कहकर आया हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैंने इसको खुदा हाफिज कह दिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको 5 मिनट पहले अलविदा किया और अभी नीचे मिलते हैं, तो इसको सेंस में नहीं लाया जाएगा, उर्दू में कहेंगे फिर अलविदा क्यों किया था 5 मिनट में जब मिलने वाले हो। अच्छा, अलविदा का मतलब था मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द कर रहा हूं, ना कि मैं तुमसे बिछड़ रहा हूं। खुदा के सुपुर्द तो मैं आप सबको कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, इसमें क्या बुराई है, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे साथ एक दोस्त चल रहा है, मैं उसे कह नहीं सकता खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, बिल्कुल कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उर्दू में कहूँ भाई अलविदा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम लोग अलहदा होने वाले हैं, अलहदा होने वाले हैं। अब मुझे जो मुश्किल लग रही है वो ये कि क्या आज का दिन वो दिन है जब हम सैयदुल शहदा से अलहदा होने वाले हैं? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? मैं सैयदुल शहदा से अलहदा होके जाऊंगा कहां, सोच भी नहीं सकता। मौत बेहतर है फिर, हम तो नहीं सोच सकते कि भाई हम एक दिन इमाम हुसैन के बगैर क्यों गुजारे। तो अजान मतलब ये तो हमारे लिए काबिल तसव्वुर नहीं है कि हम सैयदुल शहदा से इस माना में अलविदा कर दें, ये हम नहीं कर सकते। तो फिर इस अलविदा का मतलब क्या लें तो सही होगा? इस अलविदा का मतलब ये होगा कि आज हम सोग उठा रहे हैं बस। भाई जब जाहिर मुख्तलिफ कम्युनिटीज होती हैं, उनमें कोई गम का दिन मनाया जाता है, तो उस गम के दिन में कोई खुशी नहीं मनाई जाती, गम के अय्याम में खुशियां नहीं मनाई जाती। वैसे तो उनका गम ऐसा था कि हमारी जिंदगी पे हाकिम था, खुद खानदान इस्मत ने कई साल सैयदुल शहदा का गम मनाया और खुशियां नहीं मनाई। जैसे कि हमारे पास रिवायात मौजूद हैं कि जब मुख्तार सकाफी ने दुश्मनान अहले बैत अतहार के बिलअख़स हुरमला का सर भेजा, तब अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने सोग उठाने का ऐलान किया, जिसमें जाहिर है कि साल लगे, कई साल लगे, तो उन्होंने किया। लेकिन जाहिर है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जिंदगी की और जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए बहरहाल मजबूर हैं कि कुछ मरासिम खुशियों के भी अंजाम पाएंगे। मसलन बच्चों बच्चियों की शादियां होनी होती हैं और दूसरों की खुशियां मनानी होती हैं, तो हमने अपनी एक मजबूरी की खातिर एक दिन का ऐलान किया कि भाई इस दिन पर गम और सोग उठा लिया जाएगा। अब बच्चे और जिन खुशियों की तरफ हम जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। बस अलविदा का मतलब क्या हुआ? अलविदा का मतलब ये हुआ कि बाज़ाब्ता सोग के अय्याम इख्तिताम पजीर हो गए। लेकिन अलविदा का कोई मतलब ये नहीं है कि जैसे कि हम लोग, फिर मैं कहूँ मरसिया मरसिया या मसलन इस किस्म के कलाम, मौला हमारे घर से जा रहे हैं, आईजान मतलब उस घर में क्या बचा है जिसमें से मौला चले जाए, कैसी बात है? कोई सोचेगा कि मेरे घर से मौला चले जाए? ये नहीं होता। तो ये मतलब ये लोग क्या, हम लोगों ने इस तरह से सोचा हुआ था, सबका सब सिंबॉलिक था। सिंबॉलिक था इस बात पे कि अब हम शोक के अय्याम को उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मौला वाकया हमारे घर से जा रहे हैं, हमारे घर की बरकतें ख़त्म हो जाएंगी, मौला चले गए तो फिर बाकी क्या रहेगा यहाँ पर। तो ये सब का सब अलामत के तौर पर है, ना हम अपने इमाम को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं, ना इमाम हमें छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमारा उनका ज़िंदगी भर का साथ है, ज़िंदगी का नहीं, इस दुनिया के बाद क़यामत तक आखिरत तक सब में उनका साथ। अच्छा, मुमकिन है आप में से कोई ये सोचे कि भाई ये बात तकरीबन वाज़े सी बात है, इसको इतनी देर तक दोहराने की क्या ज़रूरत थी, 15 मिनट लगा दिए इसके ऊपर। हाँ, इसकी वजह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, मैंने बचपने में कुछ तजर्बे ऐसे देखे हैं जो इंतहाई नामाकूल हैं, इंतहाई नामाकूल, और उन नामाकूल तजर्बों को देखते हुए मेरा जहन ये कहता है कि होशियार कर दूं कहीं वो ना होने वाला हो। हाँ, मसलन 8 रबीउल अव्वल को, अब जगह भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई शुभा ना रहे, हम अंचोली में रहा करते थे बचपने में, कराची में एक मोहल्ला जिसको अंचोली कहते हैं। बदकिस्मती से 8 रबीउल अव्वल के दिन इख्तिताम तक आते आते मातम होता था, जो बहुत अच्छी बात है, बदकिस्मती यहाँ पे नहीं है। मगरिब के बाद मस्जिद की बराबर वाली रोड पर प्रोजेक्टर लगा के फिल्म देखी जाती थी। हाँ, मैंने खुद देखा। तो अच्छा, ये क्यों ऐसा होता था मस्जिद की बराबर वाली गली में? और इस मोहल्ले को बहुत सारे और भी अच्छे फख्र भी हासिल हैं, ऐसा नहीं कि बुराई मैं इस मोहल्ले की करूँगा, मैं उसमें वहाँ रह चुका हूँ, इस मोहल्ले में बहुत अच्छी बातें भी हैं, लेकिन एक गलत बात ये थी। अच्छा, ये क्यों ऐसा था? नहीं मालूम क्यों लोगों के जहन में ये आ गया था कि गम उठने का मतलब शरीयत उठ गई, शोक क्या उठाया, शरीयत ही उठा के ले गए। अच्छा, ये क्या तसव्वुर था? इमाम घर से चले गए, अब हम जो मर्जी आ करें, यानी नाउज़ बिल्लाह ताला, मैं बहुत माजरत के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ करे, यहां तक मैंने देखा है कि 8 रबीउल अव्वल तक नौहे पढ़ने वाली खवातीन 9 रबीउल अव्वल को अगर उनके मुंह से नौहा निकलता था तो तौबा करके गाना शुरू कर देते। ये मैंने खुद देखा है। अच्छा भाई, ये क्या हो गया? 8 रबीउल अव्वल तक आप सैयदुल शुहदा के मानने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं, तो ये अब एकदम से वो कुछ क्यों शुरू हो गया जो सैयदुल शुहदा ने कभी पसंद नहीं किया? मेंटेलिटी क्या थी? इमाम घर से चले गए, और गोया यूं हो गया कि हमारा जो दीन का मामला था वो 8 रबीउल अव्वल को वाइंड अप हो चुका है, अब हम हैं और जो हमने करना है वो है। इससे बुरी मिसालें भी हैं जो मैं नहीं देना चाह रहा हूं, वो भी होता है उसी अंचोली के अंदर। ऐसा मोहतरम, ये सब क्यों आए? हमने ये नहीं समझा कि नंबर एक, हम इमाम को खुदा हाफिजी नहीं कह रहे हैं, सिर्फ शोक उठा रहे हैं। नंबर दो, इमाम ने जिस दीन को बचाने के लिए जान दी उस दीन पर अमल हमने करना है, किसी और ने नहीं करना है, उस दीन की हिफाजत हमने करनी है। ये हम भूल गए नाउज़ बिल्लाह ताला। हमने यूं समझा गलत फहमी के नतीजे में, 8 रबीउल अव्वल तक अजा हमने करनी थी, उसके बाद अब जरा तसव्वुर कीजिए, बचे तो अगले बरस, अरे भाई तो अगले बरस तक मैं कहां जाऊंगा, इमाम हुसैन का नाम नहीं लूंगा। शायर शायर होता है, शायर पे तनकीद नहीं है, मफहूम ये नहीं ले सकते। यानी उसमें क्या था, अगर अगले बरस तक बचे तो दोबारा इसका मतलब क्या, यानी शोक के अय्याम दोबारा शुरू करेंगे, ना कि अगले बरस तक मैं अपने इमाम को खुदा हाफिज कह रहा हूं, अब अगले बरस मिलेंगे, नहीं, ये नहीं कह रहा शायर। गलत हमने समझा है, हमने गलत समझा अगर हम ये समझ रहे हैं। शायर ये कह रहा है, अब हम शोक के अय्याम खत्म कर रहे हैं, अगले बरस तक जिंदा रहे तो फिर शोक के अय्याम शुरू करेंगे। लेकिन हम लोगों ने नाउज़ बिल्लाह ताला क्या समझा, ये जो अय्याम खत्म हुए, नाउज़ बिल्लाह ताला, जितनी दीनी शरई जिम्मेदारियां थी सारी खत्म हो गई, अब हम आजाद हुए नाउज़ बिल्लाह, और अगले साल तक अब देखते हैं कि हम क्या करते हैं। اور جب محرم آنے لگے گا تو ہم ایک بار پھر شریعت کے دائرے میں واپس آئیں گے. ایسا ہرگز نہیں, ایسا ہرگز نہیں. لہذا ہم اپنے اس فکر میں جو بالکل سرفیس کی فکر تھی, لوگوں کو دیکھا کرتے تھے 2 مہینے 8 دن ٹی وی جیسے کھولا تو گناہ کبیرہ ہو گیا, اور پھر بند ہوا تو گناہ صغیرہ تو کم سے کم ہو ہی گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹی وی پہ کچھ چیزیں صحیح آتی ہیں وہ آپ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں, ٹی وی پہ کچھ چیزیں غلط آتی ہیں وہ آپ کسی بھی وقت نہیں دیکھ سکتے, چاہے وہ 8 ربیع الاول سے پہلے ہو چاہے وہ 8 ربیع الاول کے بعد ہو. جو صحیح ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, جو صحیح نہیں ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو عزیزان محترم, سب سے اہم نقطہ جو اس وقت آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو الوداع ہے یہ صرف شوق کے ایام کا خاتمہ ہے, شریعت کا اختتام ہرگز نہیں ہے. ہمارا اہل بیت سے کمٹمنٹ ہے, اس کمٹمنٹ کے نام پر ایک کام تو میں آپ کی خدمت میں ضرور تجویز کروں گا, وہ یہ کہ ہر روز امام حسین کی کوئی ایک زیارت ضرور پڑھیں, چاہے ایام شوق کے ہوں چاہے ایام بغیر شوق.